ఓం శాంతి, ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. అభి అభి ఆప్ సబ్నే బహుత్ సుందర్ గీత్ సునా. తపస్యా సే క్యా క్యా ప్రాప్తియాం హోతీ హై, లేకిన్ ఇస్ తపస్యా కా ఆధార్ క్యా హై, జో అభీ కా విషయ హై, శక్తిశాలి యోగ. तो आप सभी ये गहन मौन तपस्या भट्ठी करने आए हैं और आज प्रथम दिवस है. आपको ये स्वमान भी मिला, मैं तपस्वी मूरत आत्मा हूं. तो यह निश्चय तो है ही, और निश्चय के कारण नशा भी है कि मैं सचमुच तपस्वी मूरत आत्मा हूं. और उस नशे से आप चलते भी होंगे. और जब निश्चय और नशा हो जाता है तो फिर अवश्य उस निशाने तक पहुंचते ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं. क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है शक्तिशाली योग करना, तपस्वी मूरत बनना. अभी हम तपस्वी हैं और इसके आधार से हम ही फरिश्ता बनेंगे, घर जाएंगे, फिर देवता बन के आएंगे. और हमारा योग कोई एक आध घंटे का नहीं है, हमारा जीवन ही योगी जीवन है. वो जो हठ योग करते हैं वो कितना समय करते होंगे, प्राणायाम भी करते हैं तो कहेंगे बस 10 मिनट करो, बस सारा दिन करो नहीं कहते. कोई आसन भी करो तो 10 मिनट बस. तो वो तो थोड़े समय का होता है, लेकिन या तो जीवन का सौदा है. सारा जीवन हमारा योगी जीवन है. और योग की हम परिभाषा भी क्या देते हैं, ये जीवन जीने की कला है. योग क्या है? जीवन जीने की कला है. जीवन तो सभी जीते हैं, जो भी श्वास लेता है वो जीवन जीता है, है ना? कैसे पता चलता है कि ये मर गया, श्वास खत्म? तो जो भी जीवन जीता है, माना वो श्वास लेता है, तब कहेंगे जीवन जीता है. तो हम तो यही कहेंगे, अगर जीवन जीने की कला है तो योग हमारा श्वास है. और श्वास तो हर पल लिया जाता है, ऐसे तो नहीं कि हम श्वास को रोकेंगे. पर ये एक एक श्वास हमारा सफल हो जाए बाबा की याद में, तो कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं योग योग मत कहो, लेकिन क्या कहो? याद. और याद तो स्वाभाविक है. छोटा बच्चा भी मम्मी 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 पापा पापा करता रहता है, तो अपने माता पिता को स्वाभाविक रूप से याद करता है. इसलिए वो तो जन्म से ही हमारा स्वाभाविक गुण है, याद करना. तो ये भी बाबा कहते हैं बस याद करो याद करो, मुझे याद करो. लेकिन अंतर क्या है? वहां जो देहधारियों को याद करते हैं तो देह के संबंधों को बुद्धि में रखकर याद करते हैं। देह से स्नेह है और खुद को भी देहधारी देखते हैं, उसी लौकिक नाते से स्नेह संबंध होता है और उसी अनुसार याद होती है। और यहां बाबा कहते विचित्र है, विचित्र अपने आप को समझना है। विचित्र माना जो चित्र बिना हो, और विचित्र समझकर विचित्र को याद करना। एक तरफ तो बाबा कहते हैं वह सहज है, पर दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं मेहनत है। हमारा सहज योग भी है क्योंकि याद है, इतना सिंपल, कोई हठ क्रियाएं नहीं करनी है, कोई आसन नहीं लगानी है। और आज तो बाबा ने कह दिया याद तो कहीं भी हो सकती है, चलते फिरते तो होती है। भक्ति मार्ग में भी जो कृष्ण के भक्त होंगे, जो राम के भक्त होंगे, अपने इष्ट को बहुत याद करते, चलते फिरते भी करते, राम 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 जप करते जाते हैं, माला फेरते जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ये है। लेकिन ये क्यों मेहनत है? क्योंकि बाबा कहते हैं विचित्र वन विचित्र को याद करना ये नई बात है। अब तक हमने ये कभी नहीं किया द्वापर युग से, इसलिए देह अभिमान जो इतना पक्का हो गया है, उस देह अभिमान को तोड़ना मुश्किल लगता है। और बाबा कैसे देह अभिमान को तोड़ने की कितनी युक्तियां बताते हैं। देह अभिमान ने हमारा कितना नुकसान किया है वो भी बताते हैं। देह अभिमान के कारण हम विकारों के वश हुए, देह अभिमान के कारण हम इतने दुखी हुए, देह अभिमान के कारण हम कंगाल हो गए, देह अभिमान के कारण कलयुग आ गया। ये सब देह अभिमान का नतीजा है। और इनको खत्म करने का एक ही मूल आधार है, देही अभिमानी बनो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अलग अलग रीति से जीतना नहीं है। ऐसे नहीं कि पहले काम को जीतो, फिर क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, फिर मोह को जीतो, नहीं। इन सब का कारण है देह अभिमान। तो देह अभिमान को खत्म किया, ये विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए दिखाते न, रावण का एक एक सिर काटता था राम तो सिर वापस आ जाता था, लेकिन जब उसको नाभि में मारा जहां उसका अमृत धारा बहती थी, ऐसे कहते रावण की अमृत धारा नाभि में बहती थी, तो नाभि में जब मारा तब रावण की मृत्यु हुई। तो दे अभिमान है नाभि। वैसे भी जीवन, जब गर्भ में बच्चा पैदा होता है तो पहले नाभि बनती है, नाभि से सारा शरीर बनता। और माँ का जो भोजन है, जो बच्चे को मिलता है, वो भी कैसे मिलता है? नाभि के थ्रू। दिखाते हैं ना वो पेट में फीटस दिखाते हैं बच्चा, तो कैसे नाभि जरूर दिखाते हैं। तो इसलिए उसका बीज है दे अभिमान रावण का। तो बार बार बाबा को कहना पड़ता है बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। हाँ, कई कहते बाबा बार बार यही कहता है। तो बाबा यही मेहनत करता है, क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं बने हैं तब तक ये विकार जाएंगे नहीं। और अगर मोटा रूप चलो चला भी जाए, अभी हम अपने अंदर देखें काम नहीं है, हमारे अंदर पवित्र जीवन है हमारा, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, सब छोड़ दिया, क्या रखना, कितना चाहिए, पेटियां तो भरनी नहीं है, पता है ये सब खत्म होना है, बस सेवा अर्थ जो है वो यूज करते हैं। अहंकार भी किस बात का, कौन सा शो करना है, हम तो गुप्त हैं, तो इसलिए मोटे रूप में तो विकार है ही नहीं। कोई नहीं होगा जो कहेगा नहीं मेरे अंदर तो मोटे रूप में भी है, कोई नहीं, इसलिए पूछने की तो दरकार ही नहीं है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं उनके अंश और वंश बहुत है, अंश और वंश भी धोखा देते हैं। ये अंश और वंश ही हमारा सत्यानाश कर सकते हैं। कई बार होता है ना, वो कोई बड़ा सरदार सामने नहीं, परंतु उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो इतने तेज होते हैं, वो बड़े से भी ज्यादा तेज ऐसे। तो बाबा भी कहते हैं यही मुख्य कारण है, इसीलिए मेहनत इसमें ही लगती है। नेगेटिव विचार नहीं भी आएंगे मन में, लेकिन व्यर्थ विचार तो आते ही हैं। और ये व्यर्थ पर भी विजय, ये है वास्तव में शक्तिशाली योग। एक तो बाबा कहते हैं चलते फिरते भी करना है, लेकिन मन को काम तो देना ही है। मन तो सोचने के सिवाय रह नहीं सकता, लेकिन हर वक्त ये अटेंशन हो कि मन में क्या सोच रहे हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी बह जाता है, बहकावे में आ जाता है। तो बुद्धि के कहने पर मन नहीं चलता, लेकिन इंद्रियों के कहने पर चलने लगता है। और जब इंद्रियों के कहने पर चलने लगता है मन, और बुद्धि को दबा देता है, तो क्या होता है, मन भटक जाता है, इंद्रियां मालिक हो जाती है, और परिणाम स्वरूप कोई न कोई विकृति आ ही जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले देह अभिमान को जीतो। और कैसे देह अभिमान को जीतेंगे, जब बार बार अपने अंदर रिवाइज करेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बार बार। ब्रह्मा बाबा ने यही किया, शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई और शिव बाबा की वाणी चलती थी, तो शिव बाबा यही कहते थे बच्चे देही अभिमानी बनो, सबको आत्मा देखो। परमात्मा का ज्ञान इतना नहीं था, खुद खुदा ऐसे एक था, पर आत्मा का ज्ञान, और आत्मा के ज्ञान में कितनी दृष्टि हमारी पवित्र बन जाए, उसके लिए बाबा बहुत कहते थे सबको भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो बाबा ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की कि मैं सबको पहले आत्मा देखूं, ब्रह्मा बाबा ने। अब परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, बेटा है तो बहू है, पोते हैं, थे ना, सब थे बाबा के। 60 साल की उम्र थी, तो ऐसे नहीं कि कोई कुंवारे थे, शादीशुदा थे, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ बिजनेस, राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना, अंग्रेजों के साथ बाबा का व्यापार चलता था, व्यवहार था। तो ये सब कुछ होते हुए शिव बाबा ने उनको कैसे धक से सब खत्म करा दिया, केवल आत्मा के ज्ञान से। तो सबसे पहले तो बाबा ने कैसे ये सब जीता, वो तो साक्षात्कार तो हुए, साक्षात्कार से तो लगन लग गई, लेकिन पुरुषार्थ जो इनका अपना चला ब्रह्मा बाबा का, वो पहले इसी आधार पर चला। अब उनकी युगल थी, उनसे बच्चे तो पैदा किए थे ना, परिवार और साथ में ही थे, तभी बाबा बताते हैं वो सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पत्नी सामने नहीं होगी, बच्चे सामने नहीं होंगे, होंगे तो मौका जाएगा नहीं जाएगा, तो इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा बाशे बाबा ने, घर में रहो लेकिन पुरुषार्थ करो, जो बाबा कहते पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो सबसे पहला पुरुषार्थ क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, देही अभिमानी बनने का। अब युगल को भी आत्मा देखना है, बाबा को अपने बहू में बहुत मोह था, ब्रिजेंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू थी और बहुत सुंदर थी, जवानी में बहुत रॉयल फैमिली की भी थी, बहुत गोरी गोरी बहुत अच्छी, तो बाबा अक्सर करके इनको ले जाते थे राजाओं महाराजाओं के पास और खूब गहने वहने पहनाते थे और बहुत और भी ज्यादा सुंदर लगती थी। तो जब वो उनको रानियों के पास भेजता था बाबा, जाओ और उनको कहो क्या गहने खरीदने, वो रानियां तो नहीं जाएगी ना दुकान में, तो बाबा उन अपने बहू को कहता था, तो वो तो खूब सज धज के जाती थी, तो वो इनको देख करके बहुत खुश होते थे और कहते थे ये जो आपका नेकलेस है ना ऐसा ही मुझे चाहिए। तो बाबा तो बहुत होशियार थे, वो पहले से ही लेके जाते थे पहले से ही अपने साथ ले जाते थे कि यही मांगेगी, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही है उनकी बहू ये सब पहन करके। तो फिर वो कहते थे अच्छा ऐसे ही चाहिए, अभी मैं कहती हूँ। तो बहुत मोह था बाबा का अपने बहू में, दादी ब्रिजेंद्रा अपना अनुभव सुनाती थी। तो अब कैसे ये मोह टूटे, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है बाबा की युगल, राधिका आत्मा है, राधिका बहू बाबा की, उनका नाम राधिका था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, और उसी दृष्टि से बाबा उनको देखता था। तो जैसे एकदम न्यारा प्यारा होना उनके लिए सहज हो गया, और वो भी इतना ही सहज हो गए, नहीं तो उनका भी कोई कम मोह थोड़ी होगा बाबा में। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया जब ये बात मैंने सुनाई, तो प्रश्न क्या था कि यशोदा जो बाबा की पत्नी थी लौकिक, उसने पहले बाबा को आत्मा रूप में देखा या बाप रूप में देखा, या ब्रह्मा बाबा ने यशोदा को बेटी रूप में देखा किसको मेहनत ज्यादा लगी और किसको कोई भी मेहनत नहीं लगी, अभी ये भी एक प्रश्न है ना अब दोनों का, क्योंकि पति पत्नी का तो कितना गहरा संबंध होता है, अधिकार भी होता है, बहुत कुछ होता है पत्नी पति का पत्नी पर, और यहाँ तो बाबा एकदम न्यारे और साथ में, तो किसको मेहनत ज्यादा लगी होगी, यशोदा को ज्यादा लगी होगी या ब्रह्मा बाबा को ज्यादा लगी होगी, क्या समझते हैं? ब्रह्मा बाबा को ज्यादा लगी होगी कि यशोदा को? बाप और बाबा के आगे वो घूंघट भी निकालती थी, घूंघट निकालती थी, क्योंकि उस जमाने में तो घूंघट ही निकालते थे ना, ऐसे नहीं कोई ऐसे ही जाते थे ऐसे आजकल की तरह नाम तो लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, आजकल तो हर वक्त नाम ही लेते रहते, जमाना ही बदल गया, लेकिन इतनी शर्मीली भी थी, आप उनका फोटो देखेंगे ना बाबा की लौकिक युगल, ऐसे सिर भी ऐसे और घूंघट भी, देखा है ना फोटो, देखा होगा वो कोर्ट में जा रहे हैं मम्मा साथ में और उनकी युगल बीच में है बिल्कुल ऐसे, और जैसे घूंघट भी सिर ढका हुआ सब। अब एकदम बाबा ने कहा कि अभी कोई घूंघट नहीं निकालना है, घूंघट नहीं, सब शिव शक्तियां हो, सब शेरणियां हो, सबके घूंघट हट गए। नहीं तो माताएं भी थी, तो माताएं तो सब घूंघट निकालती थी। आज भी गांव में से ना, गांव में अभी भी घूंघट तो बहुत निकालते होंगे आप लोग, गांव गांव में सेवा करने जाते हैं। लेकिन वो कैसे शिव शक्तियां हो गई? तो हम तो भाई कहेंगे क्यों झगड़ा करो, किसने पहले किसका मोह नष्ट हुआ, या पहले किसने किसको उस दृष्टि से देखा। हमने कहा उस समय तो इतना सहज हो गया कि लौकिक जो देह के संबंध थे वो तो एक सेकंड में भूल गए। तो किसका पहले किसका बाद में वो तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि आत्मा का इतना पक्का ज्ञान बाबा देते रहे और बस वो ही करते थे, मैं आत्मा हूं बिंदु, हाँ आत्मा ब्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा वास। और इतनी देर देर तक दृष्टि देते थे एक दो को, सारी सारी रात दृष्टि एकदम एक दो के सामने, या मोमबत्ती भी जलाते थे। दादी रतन मोहिनी सुनाती थी कैसे हम लोग नाइट की बत्ती बट्टी करते थे, रात को बहुत करते थे, मौन बट्टियां तो बहुत की, और उस मौन बट्टियों में कितने नई नई बातें बाबा नए नए अनुभव कराते थे। तो वो ये बट्टियों का भी ये दूसरा रूप है, लेकिन 14 साल तो उन्होंने बहुत किया, दुनिया की निगाहों से एकदम दूर थे, कहां दुनिया में क्या क्या हाहाकार मचा हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था दुनिया में, लोग लाखों के अंदाजे मर रहे थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की बातें हुई, बहुत घमसान था भारत में भी दुनिया में भी, कहीं भूकंप आ रहे थे कहीं क्या, लेकिन बाबा के बच्चे कितने सुरक्षित थे। समाचार तो मिलता था और बाबा से पूछते थे, बाबा ये क्या विनाश हो रहा है वहां? बाबा कहते थे ये विनाश नहीं है, ये रिहर्सल है। बॉम्ब भी गिरा 1945 में, 45 में हिरोशिमा नागासाकी पर लाखों लोग मारे गए, समाचार तो मिलता ही होगा ना। लेकिन ये आत्माएं कैसे तपस्या में थी, जरा भी हिले नहीं, दुनिया की निगाहों से दूर थे। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ऐसे ही सुरक्षित रखा है। लेकिन मुख्य आधार क्या था? वो देही अभिमानी स्थिति, अंदर की पवित्रता तो थी, लेकिन पवित्रता का भी आधार तो देही अभिमानी स्थिति है ना। तो इसीलिए शक्तिशाली योग का आधार क्या है? देही अभिमानी स्थिति पहले। तो क्या चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते भी ये देही अभिमानी स्थिति हमारी कितनी रहती है, हम अपने आप से पूछें। एक है हाँ, सोते जागते जब हम कहते तो कहेंगे भाई सोने में कैसे पता चले, लेकिन सोते जागते माना एक है निद्रा योग और दूसरा है योग निद्रा। दोनों में अंतर है या नहीं? निद्रा योग और योग निद्रा में अंतर है कि एक ही बात है? निद्रा योग माना अभी योग में बैठे हैं और बैठे बैठे झटके खा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? निद्रा योग है, योग में बैठे हैं पर कर रहे हैं नींद, और पता ही नहीं चल रहा है कि हम नींद भी कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, क्लास भी चल रहा है, मुरली भी चल रही है, कई बार तो सिर भी हिलाते हैं फिर ऊपर आके फिर ऐसे क्योंकि अंदर में कुछ नहीं जा रहा है। हाँ ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं पर अंदर में कुछ नहीं जा रहा है, कहाँ है ये ही नहीं शुद्ध बुद्ध, ये है निद्रा योग। और योग निद्रा क्या है कि हम सोए हैं नींद में हैं, लेकिन नींद में भी योग है, नींद में भी योग है माना। हाँ बाबा कई बार मिसाल देते हैं, हमारी मनोहर दादी बहुत मिसाल देती थी, गुलजार दादी भी देती थी कि हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे टीचर हमको सिखाती थी कि बाबा आएंगे, मामा आएंगे, आप लोगों को देखेंगे, हाँ आप लोग पहले तो पांव स्वच्छ करो, हाँ पैर हरे को धोना था। बाबा देखते थे सबके पांव धुले हुए हैं, क्योंकि पांव अगर धुले होंगे ना अच्छी तरह से और मालिश वगैरह करते तो नींद भी बहुत अच्छी आती है सचमुच। और फिर बाबा आएंगे, लेकिन आप लोग नींद में होंगे पर बाबा जैसे आए आपकी आंख अपने आप खुल जानी चाहिए। तो बाबा आकर के देखते थे, तो बच्चे थे, हाँ छोटे थे, लेकिन बाबा ने उनको कैसे सिखाया, टीचर्स ने सिखाया। और जैसे बाबा आते थे बिल्कुल साइलेंस में बाबा उनके आगे खड़े हो जाते थे और एकदम आंख खुल जाती थी, ऐसे नहीं कि झटके से, पर एकदम जैसे योगी की आंखें, उनको भाषण आती थी बाबा आगे। तो उसको ये योग निद्रा नींद में, और बाबा आए और एकदम अपने आप जग गए और बाबा से दृष्टि ले रहे। तो बाबा देखते थे कि ऐसे नहीं कि ऐसे सोए हैं जैसे कि बिल्कुल घोड़े बेच के सोए हैं, नहीं, हाँ इसको कहते घोड़े बेच के सोना, जैसे कि बिल्कुल रजाई तान के, बिल्कुल जैसे कुछ भी दुनिया की सद्बुद्ध नहीं, लेकिन वो स्थिति। तो ये कैसे आएगी जब देही अभिमानी स्थिति होगी। कईयों का होता है ना, सोते हैं यहाँ और जब उठते हैं तो वहां लुढ़क लुढ़क के, पता नहीं कैसे लुढ़क जाते हैं, कई तो पलंग से भी गिर जाते हैं सता ही नहीं चलता है। तो ये तो योग निद्रा नहीं है ना। गहरी नींद आना भी जरूरी है, क्योंकि गहरी नींद आने से हमारे बॉडी में शक्ति तो आती है, लेकिन ऐसी गहरी ना हो जो पता ही नहीं चले, सुध-बुध सब खो दे। क्योंकि कई जो जैसे सवेरे उठते हैं हम कहाँ यही पता नहीं चलता है, कहाँ है, कई बार होता है पता ही नहीं हम है कहाँ, और ये भी नहीं पता कि दिन में सोकर उठे या रात को सो के उठे कैसे भी बताते हैं हमारा अभी एक घंटे के लिए नींद थी, आराम किया और उठे तो ऐसे लगा पता नहीं ये तो रात हो गई जैसे। तो इसीलिए वो तो योग निद्रा नहीं है। बस सोए, बाबा की याद में सोए, बाबा की गोद में सोए और एकदम बाबा को कहा बाबा 3 बजे उठाना, और देखो बाबा कई बार कहते हैं खटिया हिलती है, आप लोगों की भी हिलती है, ऐसे अनुभव होता है ना, आप लोग बहुत पठिया करते भी हो, बहुत तपस्या करते हो, तो ये होगी योग निद्रा।